Suprabhat.
Suprabhat.
Good morning.
It is good to be together.
और एक साथ यहाँ पे आपके साथ बैठना अच्छा लग रहा है.
So let us just go right into it with chapter 9 of Hebrews.
और इब्रानी 9 को हम निकालेंगे और हम लोग पढ़ेंगे.
We'll start this morning with someone reading it in Hindi.
और सुबह आज सुबह अभी हम लोग इधर से हिंदी भाई बहनों से कोई पढ़े हम चाहते हैं.
वो पहली भाषा मैं भी सेवा के नियम थे और ऐसा कोई इंसान था गलत कर रहा क्योंकि एक तंबू बनाया गया पहले तंबू में जीवन और मैं और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है. दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है. उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मरा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्दबान और हाथी की छड़ी पहले तंबू में याद करते सेवा के कार्य को संपन्न करते वर्ष भर में एक ही बार जाता है वह बिना लघु लिए नहीं जाता जिससे वह अपने लिए और लोगों की दिलचुट के लिए जाता है. इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ. यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों की भेंट सिद्ध नहीं हो सकते क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े प्रसिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं पता कि सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया क्योंकि जब बकरों और भेड़ों का और गलों की रात का अपवित्र होकर शुद्धता जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे भेद को भरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो. इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत विनाश को प्राप्त करें क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समय देना भी अवश्य है क्योंकि ऐसी वाचा बांधने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम नहीं होती. इसीलिए बिना लोगों के नहीं बांधी गई क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा स्पष्ट था तो उसने बच्चों और कपड़ों का लहू लेकर पानी में डाल और जुम्मा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा क्या उस लोग है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के लिए सेवा के सारे सामान का लहू छिड़का. सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बनाए कौन सी क्षमा नहीं. इसलिए अवश्य की स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए और स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया पर स्वर्गीय में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे. यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता थे नहीं तो जल की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार सुख उठाना पड़ता पर अभियुग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना युक्त है वैसे ही मसीह भी भक्तों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप लाए हुए दिखाई देगा.
थैंक यू. So you may remember what we spoke about yesterday. Hopefully you remember.
और मैं आशा करता हूँ कि कल हम जो बात किए थे उसको आप याद किए होंगे.
The writer of Hebrews in chapter 8, he had introduced the new covenant.
और इब्रानी के लेखक 8 अध्याय में नया नियम को वो हमारे सामने ला रहे हैं, नई वाचा को.
And we looked at the difference between the old covenant and the new.
और हम लोग देखे पुरानी वाचा और पुराना नियम और नया नियम में क्या अंतर है.
How that in the old covenant it was all about you doing certain things towards God.
और पुराने नियम में क्या था, तुम्हें, तुमको, आपको करना है, वहाँ पे कैसे लिखा जाता है.
In the beginning of chapter 9, he tells us that the old had many things that were with it.
और ये 9 की शुरुआत में जैसे लिखा जाता है कि वही पुराना नियम में बहुत सारे ऐसे आवास के तुम्हें बहुत सारे चीजें थे.
And that although they were made after the pattern shown Moses in the mount.
और मूसा को जैसे पहाड़ के ऊपर दिखाया गया था स्वर्ग की नमूना, उसी के अनुसार वो उसको बनाया था.
They were all temporal. They were all made by hands by man.
परंतु वो इंसान के द्वारा बनाया गया और कुछ ही क्षणों के लिए हुई था.
And because of that, they were going to fail. They were going to pass away.
इसीलिए जो क्योंकि इंसान के द्वारा बनाया गया था और कुछ ही दिनों के लिए गया, उसके बाद वो नहीं हुआ.
They were going to wear out.
और वो पुराना हो गया.
And then he tells us that the heavenly is not the same as the earthly.
और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्वर्गीय तंबू है वो ऐसा नहीं है परंतु.
Remember, they are a shadow of the true.
याद कीजिए कि ये सब पुराना नियम में जो है वो एक छवि है नया नियम का.
And that the heavenly is eternal.
और जो स्वर्गीय है वो अनंतकालीन है.
And so the first covenant, did it fail in what it was to accomplish?
और जो पहला वाला था वो उतना पूरा नहीं कर सका जो नया नियम करता है.
The answer would be no.
और वो सहा हमारा उत्तर होगा नहीं.
If you are sitting here as a Christian today, it is because the first covenant achieved its end.
और आप यहाँ पे मसीह की जो ना आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, इसका मतलब यही है जो पुराना नियम जितना कर सकता था उतना ही किया, पूरा पूरे आपके लिए नहीं किया वो.
It has shown you your sin and your need of a savior and of a better covenant.
वो पुराना नियम आपको दिखाया कि आप एक पापी हैं और आपको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है.
So it actually has given us the fulfillment of what it was to do.
और ये सही में जो आने वाले दिनों में पूरी की जाने वाली है वही चीज को ही हमें दिखाया.
And so we know that the first covenant could never make us pure.
और इसीलिए हम जानते हैं कि जो पहला वाला नियम हमें दिया गया था, पुराना नियम जिसे कहते हैं, वो हमें शुद्ध नहीं बनाता.
As a reminder, let's turn to Galatians 3.
और याद करने के लिए गलतियों के पत्री 3 अध्याय हम निकालें.
And someone read verses 19 to 24 for us.
और कोई 19 से 24 गलतियों 3 अध्याय 19 से 24 पदों के ही पढ़िवा.
So,
this one.
When you were
19 to 24, no?
Yes, sir.
So, this one, John.
So each of you here speak a language.
और यहाँ पे आप लोग जितने बैठे हैं सब एक भाषा को, बोली को बोलते हैं.
You speak Oriya.
आप उड़िया बोलते हैं.
They speak Hindi.
और ये भाई बहन लोग हिंदी बोलते हैं.
I speak English.
भाई ये अंग्रेजी बोलते हैं.
Some are able to speak more than one.
और कोई कोई एक बोली से भी ज्यादा बोल सकते हैं.
And some of you even understand what I say as well.
और कोई कोई यहाँ पे बैठे हैं तो अंग्रेजी पूरी तरह समझ भी ले रहे हैं.
Why is that?
क्यों?
Because you sat under a schoolmaster.
क्योंकि आप एक शिक्षक के नीचे आए थे वो आपको सिखाया था
someone whether it was your parents
हो सकता है वो आपके पिता माता हो सकते हैं
could have been your siblings
और आपके भाई बहन हो सकते हैं
or a teacher in a school
और स्कूल में विद्यालय में आपके शिक्षक हो सकते हैं
someone took the time to teach you how to speak
कोई अपना समय लिया और वो आपको बताया सिखाया कि कैसे बोलना है
while I've been here I've been trying to word to learn words in Oriya
और जब तक मैं यहाँ पे हूँ उड़ीसा में मैं सीख रहा हूँ कुछ कुछ उड़िया शब्द को भी
and I've only got a few
और मैं कुछ ही सीख रहा हूँ
but what I don't know is how to put them together in a sentence
और मुझे अभी तक पता नहीं मैं थोड़ा थोड़ा शब्द को जान लिया हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि उसको वाक्य में कैसे बोला जाता है
because that takes time
क्योंकि वो समय ही लगेगा
and that takes a teacher
और उसके लिए मुझे एक शिक्षक की जरूरत है
the same thing is true of the law
और व्यवस्था को लेके यही चीज ही सत्य है
it was our school master
और व्यवस्था जो था वो हमारा स्कूल मास्टर था
it was to teach us a language
और वो हमें एक बोली सिखाया क्या कैसे बोलना है
so that when our savior comes
और जब हमारा उद्धारकर्ता आएंगे
not only do we know that we're sinners
और हमको ये खाली मालूम नहीं होगा कि हम पापी हैं
we can understand what his work accomplishes for us
परंतु हम जान पाएंगे कि वो हमारे लिए क्या-क्या काम किए हैं
if we didn't have the Old Testament
अगर हमारे पास पुराना नियम नहीं होता
we have no concept of him as our high priest
तो हमें हमारा जो महायाजक आएंगे उसके बारे में भी हमें पता नहीं चलता
to what religion would we look to say oh he's like this or he's like that
और ऐसा है कोई भी धर्म में हम कह सकते हैं वो ये उसके जैसा दिखता है ये उसके जैसा दिखता है ऐसे नहीं हम कह सकते थे
if we didn't have the Old Testament we wouldn't know him as our king
और अगर पुराना नियम हमारे लिए नहीं होता तो हम यीशु को राजा के हिसाब से भी नहीं देख पाते
Living in England, I've studied English history quite a bit.
और जैसे वो इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड का इतिहास वो पढ़ रहे हैं.
And there's not an English king that I would look to as the example for what I would want Christ to be.
और वहाँ पे जो इंग्लैंड का कोई राजा को नहीं देख रहे कि जैसे को मान लेंगे कि ये मेरा राजा है.
But the Old Testament gives us examples.
परंतु पुराना नियम उदाहरण देता है कि हमारा मेरा एक राजा है.
The same is true for our prophet.
और वैसे नबियों के लिए मेरे नबी के लिए भी वो है
all of this is there to teach us who Christ is
और इसीलिए हमें ये पुराना नाम दिया गया है ताकि हमें से वो शिक्षा दे सके कि यीशु कौन है
and not just who he is but what he's done on our behalf
खाली वो कौन है वो उतना नहीं परंतु वो हमारे लिए क्या-क्या किया है वो भी हमें शिक्षा देता है
but that's not the end of it
परंतु यहां पे शेष नहीं होता
there's a greater aspect to Christ
और उससे कहीं बढ़कर यीशु के पास कुछ है
and although you may find it strange that we just read verses 19 to 24
और आप अभी जब जैसे गलतियों के पत्र 3 का 19-24 को पढ़े
I'll ask someone to now read verses 1 through 14 of Galatians 3.
मैं अभी कहूंगा कोई वही गलतियों के पत्र 3 अध्याय 1 से लेकर 14 आयत तक कोई पढ़े गलतियों 3 रो 1 रो 14 ये नहीं
तो मैंने ये तो मैंने तो मुझे तो जेने नेता अच्छी जे कहीं व्यवस्था पुस्तक में लिखित तो व्यवस्था द्वारा कहीं जे ईश्वरों को साक्षात्कार धार्मिक बोलित हुए नहीं यह तो स्पष्ट कारण धार्मिक विश्वास द्वारा हो विश्वास व्यवस्था मूल विषय नुहे व्यवस्था मूल विषय यही जे यही सब पालन कले से बचे जीशुख्रीष्ट अब्राहम आशीर्वाद जेपरी विजाति मान प्रति बढ़े पुणी आम मैंने जेपर विश्वास हेतु प्रतिज्ञार आत्मा प्राप्त हुए ये ख्रीष्ट आम मान निमें अभिशप्त हो व्यवस्था अभिशाप आम मान मूल्य मुक्त कले कारण लेखा अच्छी जे के खुंडे टंगा जाए से अभिशप्त हे भाई मैंने मनुष्य भाव कहूँ मनुष्य द्वारा कला गले
ठीक अच्छे अभिशप्त ओके थैंक यू
थैंक यू. So Paul starts off this chapter and he says, "Oh foolish Galatians."
और यहाँ पे जैसे पौलुस उनको कह रहा है गलतियों पत्री में लिख वो कहता है कि तुम मूर्ख हो.
There's something I cannot understand.
वो निर्बुद्धि बोल के कह रहा है कि कुछ है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है.
You didn't come to Christ by the law.
और तुम लोग मसीह में व्यवस्था के जरिए नहीं आए.
You came to Christ through faith by the Spirit.
और आत्मा के द्वारा विश्वास करने के हेतु तुम यीशु मसीह के पास आए.
So how then would you want to go back to the law?
फिर कैसे तुम व्यवस्था की ओर दौड़े जा रहे हो फिर?
And he gives us some explanations as to why that is such a foolish thing to do.
और वो विस्तार से बता रहा है कि ये कैसे मूर्खता है वो किस तरह से वो लोग कर रहे हैं.
He says if you are in Christ.
अगर आप मसीह में हैं.
If you believed upon him.
अगर आप उस पर विश्वास रखते हैं.
Then you are a child of Abraham.
तब आप इब्राहिम के संतान हैं.
And he says Abraham was never under the law.
और वो कह रहे हैं कि इब्राहिम जो है वो व्यवस्था के नीचे नहीं थे.
He was 430 years before the law.
और व्यवस्था से 430 साल पहले वो थे.
God made the promise to him before the law was even close to being written.
और परमेश्वर ने उनको ये दिया उससे वो व्यवस्था जब आने से 430 साल पहले.
So then how could the law do away with the promise?
और तभी व्यवस्था कैसे प्रतिज्ञा के साथ जुड़ा जा सकता है?
Or how could the law even change the promise?
और व्यवस्था कैसे प्रतिज्ञा को बदल भी सकता है?
The law didn't change the promise.
व्यवस्था कभी प्रतिज्ञा को बदला नहीं कभी बदल नहीं सकता.
The law didn't do away with the promise.
और व्यवस्था प्रतिज्ञाओं को कभी दूर नहीं कर पाता.
The law enhanced our knowledge that we need the promise.
लेकिन व्यवस्था हमें सिखाता है कि हमें प्रतिज्ञा चाहिए.
And in that, in Christ has fulfilled the law.
और यहाँ पे यीशु मसीह जैसे व्यवस्था को पूरा की अपने में.
And that him giving us his righteousness.
और उन्हीं के द्वारा उनका धार्मिकता जो हमें दिए.
By him fulfilling the law.
क्योंकि वो व्यवस्था को वो खुद पूरा किए.
We've fulfilled. The law.
और उसका मतलब हम पूरा किए व्यवस्था को.
So that the law hasn't become something that we're doing away with.
और इसका मतलब यही नहीं है कि व्यवस्था को लेके हमें कुछ करना है.
But we fulfilled it. We have moved past it.
लेकिन हम उससे परे हैं उसको हम कि मसीह के द्वारा हम सफल किए हैं उससे परे हैं.
That is not a freedom to sin.
इसका मतलब यही नहीं है कि हमें यानी ऐसा स्वाधीनता नहीं मिला कि हम पाप करें.
But it is a freedom from the law.
लेकिन हमें व्यवस्था से मुक्ति मिला है.
And it's a freedom from the curse of the law.
और श्राप से यानी व्यवस्था की श्राप से हमें मुक्ति मिला है.
Because everyone who's under the law is under the curse of the law.
क्योंकि जो व्यवस्था के नीचे है वो श्रापित है.
So he's saying in Galatians if you're going back to the law.
और वो कह रहे हैं कि गलतियों तुम अगर व्यवस्था की ओर फिर जा रहे हो.
Then you're going back to the curse.
Then तुम फिर श्राप की ओर जा रहे हो.
And therefore Christ has no effect.
और इसीलिए यहाँ पे मसीह का कुछ यहाँ पे आपके जीवन में प्रभाव नहीं है.
It's a foolish thing to go back there.
और ये मूर्खता है कि और व्यवस्था की ओर दौड़ना है.
And the writer of Hebrews wants to us to understand that.
और इब्रानियों के लेखक यहाँ पे हमें वही समझाना चाहते हैं.
Back in chapter 9.
और 9 आयत में जब देख 9 अध्याय में जब देखते हैं.
After talking about the sacrifices in the Old Testament.
और पुराने नियम में जितने बलिदान थे उसके बारे में बात करने के बाद
and all the items of the tabernacle,
और जितना भी उपकरण थे उसके बारे में बात करने के बाद
he says in verse 15,
और 15 आयत में वो कहते हैं
For this cause he is the mediator of the New Testament.
और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ ठहरे.
That by means of death.
ताकि उस मृत्यु के द्वारा.
For the redemption of the transgressions that were under the First Testament.
जैसे पहली वाचा के समय में अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है.
They which are called might receive the promise of eternal inheritance.
और बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत विरासत को प्राप्त करें.
Because of Christ and who he is.
और मसीह जो है.
He goes below the angels.
और वो स्वर्गदूतों के नीचे गए.
He fulfills the law.
वो व्यवस्था को अपने में पूरा किए.
So that he is the perfect mediator.
ताकि वो हमारे लिए एक अच्छा सिद्ध मध्यस्थ ठहरे.
And by his death and resurrection, he redeems those that were under the law.
और उसके मृत्यु के द्वारा और ताड़ना के द्वारा वो उसके ऊपर जो विश्वास करते हैं उनको वो मुक्ति दे सके.
What does that word redeem mean?
और जो मुक्ति उसका शब्द का अर्थ क्या है?
It's to pay the price to make someone free.
वो छुटकारा का मतलब है कि कुछ मूल्य देना है किसी को छुड़ाने के लिए.
I don't know if there are such things as kidnapping for ransom in India.
Yes, it is. Yes.
So, when someone is kidnapped for a ransom,
अगर किसी को कोई किडनैप कर लेता है और उसके लिए वो पैसा मांगता है,
they've been taken away and they're held.
और उनको लेके वो ले लेते हैं.
And until the loved one pays the price,
जब तक वो यानी उनके परिवार लोग उनके सगे संबंधी उनको पैसा नहीं दे देते,
that person will not be free.
उनको छोड़ते नहीं. ऐसा होता है कि नहीं भारत में?
But once the person, once the ransom is paid,
परंतु जब वो पैसा दिया जाता है,
and the person is free,
और जब वो उस लोगों को वहाँ वो लोग छोड़ देते हैं,
what would you think of that kidnapped victim?
और उसके बारे में जो किडनैप किया था उसके बारे में जो जिससे किया गया था उसके बारे में क्या है?
After they get home and they're with their family,
और वो जिसको किडनैप किया गया था वो आके अपने घरों में रहते हैं.
They say, you know what? I liked it better when I was over there being kidnapped.
और वो क्या कहते हैं? कई कबार होता है कि अरे यार यहाँ पे आके अच्छा बेहतर था. वहाँ पे मुझे किडनैप किया गया था, अच्छा था. वहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा था. वहाँ पे वहाँ था बोल के.
And they leave their loved ones and they go back to the kid.
और ये अपने परिवार को फिर छोड़ के उधर चले जाते हैं जो उसे किडनैप किया था उसके पास.
That's the picture of our redemption.
ये हमारा छुटकारा का छवि है.
And those that are foolish enough to go back under the law.
और जो मूर्ख होते हैं वो ही व्यवस्था की ओर दौड़ते हैं बाइबल बताती है.
They've forgotten the one who bought them.
और वो भूल जाते हैं कि उनको कौन खरीदा है.
And place themselves under the power of those who just want something from them.
और वहाँ पे वो चले जाते हैं और कुछ चीजों के लिए.
Turn over to Isaiah 53.
और Isaiah यशाया उसका 53 को निकाले.
And I'd like you to really listen as someone reads that.
और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने कोई भाई और बहन जब उसे पढ़ रहे हैं.
Pay attention to the words that are said about our Savior and what he's done for us.
और हमारे उद्धारकर्ता के सारे शब्द को ध्यान से सुने और वो हमारे लिए क्या किए हैं उसे ध्यान से सुने जब भाई और बहन कोई पढ़ रहे हैं आपके बीच में. From 1 to
53 through the whole chapter. Okay.
पूरा पढ़े एक से लेके पूरा.
দেখিলে দুঃখী লোক ও শোক পরিচিত मेसो सबको तुल्य लोम छेदक मनक सम्मुख रे नीरव मेसि तुल्य होई से अपना मुख फिटाइले नहीं से उपद्रव और विचार द्वारा दूरीकृत हले आउ से जे जीवित लोकन को देशरु उछिन हले एहा तहांक समरे लोकमानक मधिरे किए विवेचना कला आंभ लोकमानकर अपराध निमते से प्रहारित हले उनी से कौनसी दौरात्म्य न कले हैं और तहांक मुखरे कौनसी छल न थिले हैं लोकमाने दुष्टगणर सहित तहांकर गोबर निरूपण कले अमृतिरे से धनवानर संगी हले तथापि तहांक चूर्ण करबाकु सदा प्रभुंकर अभिमत हला से तहांक दुखग्रस्त करियाछंति तुम्हे तहांक What animal sacrifice could do that?
और कोई ऐसा पशु का बलिदान जो ऐसा कर सकता है क्या?
He paid for the sins of all those that went before him that believed.
और उसको उसके ऊपर विश्वास करने वाले सब लोगों के लिए वो अपने से एक ही बलिदान को किया.
The sins of at least 4,500 years.
और 4,500.
Yes.
Okay. 4,500 साल का जितना भी पाप था सब पाप को ले लिया उससे पहले जितने थे.
And not only did he pay for the sins that were past.
और खाली जो 4,500 यानी आदम तक उनका पाप खाली नहीं.
For those that believe, he's paid for the sins that are going forward.
परंतु आने वाले दिनों में जैसे आप और मैं और भी जो आएंगे सबका पाप एक ही साथ ले लिया.
So he's paid for the sins of the past 2,000 years.
और वो आने वाले 2,000 साल तक उसका सब पाप का ले लिया.
And for however long it is until he returns.
और हमारे जब तक वो नहीं आता है तब तक का पाप भी.
So think about what the writer of Hebrews has been telling us.
और ध्यान दीजिए इब्रानी के लेखक हमें क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं.
In regards to the New Testament, the New Covenant.
और जब नई वाचा के बारे में हम लोग बात करते हैं.
We learn that he is the surety of it, like Judah for Benjamin in Genesis 43.
जैसे हम उत्पत्ति उसका 43 में देखे जैसे यहूदा अपने भाई बेंजामिन के लिए जामिन ठहरा वैसे नई बातचे के लिए यीशु मसीह जामिन है.
We learn that he is the messenger of it in chapter 1 like Moses was for the new for the old covenant.
और एक अध्याय में हम लोग पढ़े कि हमारे लिए जैसे मूसा पुराने नियम के लिए एक मैसेंजर था एक दूत था उसी तरह वो हमारे लिए हुए.
We learn that he is the priest for it as Melchizedek was and Moses was and Aaron was in the Old Testament.
हम लोग पढ़े पुराने नियम में जैसे मलकीसेदेक याजक थे उसी तरह वो हमारे लिए याजक बने.
We learn that he is the mediator of it.
और हम सीखे कि वो हमारा मध्यस्थ हैं.
But I want you to think about that term mediator for a moment.
और ये मध्यस्थ के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे.
We've talked about it quite a bit, haven't we?
और हम इसके बारे में कुछ ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं.
And unfortunately, our brother with the mangoes has just had to step out for a moment.
और यहाँ पे आई थिंक दैट वन आई थिंक
नो नो ही जस्ट स्टेप्ड
ओके ओके जो भाई के साथ हम उनके आम के साथ जो उनका उस दिन हम लोग बात कर रहे थे उस भाई के बारे में मैं कह रहा हूँ
अ मीडिएटर इज नेसेसरी व्हेन देयर आर टू पार्टीज एट वेरिएंस एट कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर
और मध्यस्थी का जरूरत है जब दो व्यक्ति यानी दो पार्टी दो दल हैं उनके बीच में
वी नीड अ मीडिएटर बिटवीन अस एंड गॉड
और हमारे लिए हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में हमें एक मध्यस्थी की जरूरत है
Although I should say we needed a mediator.
और मैं कह सकता हूं कि हमें जरूरी है
Because do we need a mediator now if you are a Christian?
और क्या आप जो मसीह होने के नाते आपको अभी मध्यस्थी का जरूरत है?
What we were told by Paul in 2 Corinthians 5:21.
और दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 21 पद में पौलुस क्या कहता है?
What has the writer of Hebrews confirmed to us time and again?
और इब्रानियों के लेखक हमें इसे क्या अटल भाव में हमें कहते हैं?
We have been reconciled.
हमको वो उसके साथ मिलाया है
the gap that was between us and God has been removed by our mediator
और जो परमेश्वर हमारे बीच में जो स्थान था गैप था वो यीशु मसीह ने पूरा किया मिलाया है
the veil has been torn in two
और पर्दा को दो टुकड़ा किया गया है
we have access to the mercy seat
और दया की आसन की ओर बढ़ने के लिए हमें अनुमति मिल गया है
to the very throne of God
और परमेश्वर के सिंहासन के सामने
where our great high priest sits even now
जहां पे हमारे महायाजक अभी भी बैठे हुए हैं
in one sense yes we're still sinners we still need a mediator
और एक तरफ अगर देखते हैं अभी भी हम पाप करते हैं हमें अभी भी मध्यस्थता चाहिए
and thankfully he intercedes on our behalf
और प्रभु का धन्यवाद वो हमारे सपक्ष में वो प्रार्थना कर रहे हैं
but there is a great sense in that his mediatorial work was done when he died and rose again
परंतु हमें ये जानना है जब वो क्रूस पर गए मरे और जी उठे तभी उनका मध्यस्थता काम पूरा हुआ
because as a mediator he wrote it down in his will
और क्योंकि मध्यस्थ के हिसाब से वो जो करना था उसे वो किया और लिखा
he said when I die
वो कह रहे हैं कि जब मैं मरूंगा
this is what those that believe in me get
और ये सारे चीज जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उनको मिलेगा
peace with God
और परमेश्वर का शांति
forgiveness of sin
और पापों की क्षमा
righteousness
धार्मिकता
and so he is the mediator of the new testament
और इसीलिए वो नई वाचा का मध्यस्थी है
but he's also the testator
और लेकिन वो परीक्षा होके गया
let's look at verse 15 and verse 16 and 17
15 16 17 को जब देखते हैं 9 अध्याय
someone read those for us
कोई पढ़े हमारे लिए 9 का 15 16 17
आओ एही कारण अनुसार नूतन नियम और मध्यस्थ होई अछंती जे परि प्रथम नियम कालीन अपराध वर्षाते मृत्यु भग करा जायथि पर आहुत लोक माने अनंत अधिकार संबंधीय प्रतिज्ञा फल प्राप्त होंती कारण उइल करा जायथिले उइल करैथिबा व्यक्ति को मृत्यु रो प्रमाण आवश्यक जेने मृत्यु घटिले
Now I need to give you a little bit of a history background.
मैं आपको कोई इतिहास background में आपको देना चाहता हूँ पृष्ठभूमि को.
I'm a bit strange. I love history.
और उनको अच्छा लगता है इतिहास को जानने में.
Because there's a lot of things we can learn from it. That we can apply to our lives.
और क्योंकि इतिहास से हम बहुत सारे कुछ सीख सकते हैं और हमारे जीवन में उसे उपयोग कर सकते हैं.
So the Old Testament was written in Hebrew.
और पुराना नियम जो है वो इब्रानियों भाषा में लिखा गया है.
Except for the Book of Daniel, which was written in Aramaic.
परंतु खाली डैनियल को छोड़के जो अरामी भाषा में लिखा गया है.
But after the Jews returned from the exile.
और जब इस्राएली लोग बंधुआई से आए.
A nation conquers nation.
और देश और एक देश को जीता.
You might have heard the name Alexander the Great.
आप अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुने होंगे.
You know who he is?
आप जानते हैं कौन है वो?
Yeah.
कौन?
He conquered the then known world of the Europe, Middle East.
और वो सारा यूरोप और मिडिल ईस्ट मध्य एशिया को सारा को जीत लिया.
And made it all the way to India.
और भारत को भी.
But because of Alexander the Great,
Alexander the Great के लिए,
the Greek culture and the Greek language was spread all over what we think of as Europe, Turkey, the Middle East, Africa, Iraq, Persia.
और अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए उसका जो संस्कृति था, भाषा था, और सब कुछ चारों देश में फैल गया, जैसे कि सर देश बोले, सारे देश में फैल गया.
So that as we're able to speak in English because of a similar situation,
और हम जो अभी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं ये ऐसे ही है.
It didn't matter where you went during the Roman Empire.
और इसका मतलब ये नहीं आप ये रोमी साम्राज्य के समय में कहां का आप गए,
people spoke Greek.
लोग वहां पे तभी यानी ग्रीक में बात कर रहे थे.
The majority of people were at least bilingual.
और जो यानी ज्यादा लोग थे वो दो भाषी थे, दो भाषा में बात कर रहे थे.
They spoke their own language.
और वो अपना भाषा बोल रहे थे.
And they spoke Greek.
और ग्रीक भी बोल रहे थे.
Because so many Jews had been carried to different places,
और क्योंकि बहुत सारे यहूदियों को बहुत सारे जगह देश में चले गए थे, उनको लिया गया था.
And suddenly they were speaking Aramaic.
और वहाँ पे जब वो अरामिक बोले,
and some were speaking Hebrew.
और कोई वहाँ पे इब्रानी यानी हिब्रू बोले,
and some were speaking other languages.
और कुछ कुछ लोग वहाँ पे यानी दूसरी दूसरी भाषाओं को बोले.
The Jews thought, well, we've got a bit of an issue.
और यहूदी लोग सोचे कि हमारे पास ये एक इशू हो गया है.
The Old Testament was written in Hebrew, but not everybody understands Hebrew.
पुराना नियम जो है वो हिब्रू भैया हिब्रू भाषा में और इब्रानी भाषा में लिखा गया, जो जिसको कि कोई भी समझ नहीं पाता, खाली ये लोग समझ पाते हैं.
So somewhere around the year 200 to 185 BC.
और
200 to 185 BC.
200
से 100 BC के बीच में. Remember when you're in before Christ, you're counting down in years towards Christ.
आप याद कीजिए जब BC कहा जा रहा है तो हम ज्यादा से लेके ऊपर से लेके नीचे तक आ रहे हैं, जब तक मसीहा नहीं आता. BC में before Christ.
The Jews in Jerusalem decided that they needed to translate the Old Testament into Greek.
और यहूदी लोग जो यरूशलेम में थे, वे लोग ये पुराना नियम को जो हिब्रू भाषा में लिखा गया था उसको ये लोग यानी अनुवाद किए ग्रीक में.
That way, no matter where they went in the empire, every one of the Jews would understand God's word.
और इसीलिए क्या हुआ, जहां पे भी कुछ ऐसे यहूदी लोग थे और उसी साम्राज्य के दौरान कुछ लोग समझ पाए.
That translation we call the Septuagint.
और ये जो अनुवाद हुआ उसको हम सेप्टुएजेंट बोल के कहते हैं.
That Septuagint is the Bible that Jesus read.
और ये जो सेप्टुएजेंट कहा जाता है, ये बाइबल जो यीशु मसीह पढ़ रहे थे उस दिन.
He was reading it in Greek, not in Hebrew.
और जो पढ़ रहे थे आराधनालय में वो ग्रीक में लिखा था, ना कि हिब्रू में.
The writers of the New Testament were reading it in Greek, not in Hebrew.
और नया नियम के जितने भी लेखक हैं वो अपने लेखा को ग्रीक में ही लिखे हैं, हिब्रू में नहीं.
And when the writer of Hebrews quotes from the Old Testament,
और जब नया नियम का इब्रानी का लेखक जब पुराने नियम से कुछ कुछ उक्ति को लेके आ रहे हैं,
he's quoting from the Septuagint.
वो सेप्टुएजेंट जो कहा गया उसी से लेके आ रहे हैं.
Now a few hundred years after Christ,
और यीशु मसीह के कुछ साल बाद,
the Jews thought, well, we may have made a mistake.
और वो लोग यहूदी लोग सोचे हो सकता है हम ये जो करके हो सकता है हम गलती कर दिए हैं.
We really want to have all of the copies of the Old Testament in Hebrew.
और हमें क्या करना चाहिए, पुराना नियम जैसा था पहले इब्रानियों को ऐसा है कि हमें एक इब्रानी यानी हिब्रू भाषा में चाहिए हमें.
And they took the manuscripts they could find.
और जितने भी उनके पास वो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको मिला उनको.
That were written before in Hebrew.
और जो हिब्रू भाषा में लिखा गया था उससे पहले.
Which you can imagine after 400 or 500 years weren't in the best of shape. Weren't in the best condition.
Okay. जो 400-500 साल पहले जो हो सकता है manuscript अच्छा condition में था.
And they wrote out the Hebrew Old Testament again.
और वो लोग फिर से एक बार पुराना नियम को हिब्रू में लिखने लगे.
With help from the Septuagint.
और Septuagint का मदद लेके.
So there are a lot of things we can learn from the Septuagint.
इसीलिए बहुत सारा चीज जो हमें ये Septuagint से सीखने को मिलता है.
And just so you know, my English Bible.
आप जानते हैं मेरा अंग्रेजी बाइबल.
And from what I can understand about all the translations that currently take place in the world.
और ये दुनिया में जितने भी अभी अनुवाद हो रहा है बाइबल का और हम जो समझ रहे हैं.
I have to confess, I don't know all of that needs to be known of that.
मैं सही बता नहीं सकता हूँ ये मेरे यानी मैं खाली मेरा मैं कह रहा हूँ.
But our Old Testament, the Old Testament you have in your hand.
और आपके पास जो नया नियम है और पुराना नियम है.
Is translated from that Hebrew text.
और ये जो है वो जो इब्रानी भाषा का था वहां से अनुवाद हुआ है आपका पुराना नियम.
Not the Septuagint.
और सेप्टुजेंट से नहीं.
Now the beautiful thing about that.
और ये यहाँ का सुंदरता ये है.
Is that having it in Hebrew and having it in Greek gives us a greater understanding of the meaning.
और हमारे पास इधर पुराना नियम है हिब्रू का और नया नियम जो ग्रीक का हमें कुछ अच्छा अर्थ देता है.
That there are shadows and implications because it's here in Greek this way.
और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छवि जिसको हम प्रयोग करने वाले हैं वो जो ग्रीक में दिखाई पड़ता है.
And here in Hebrew this way.
और यहाँ पे एक साइड में हिब्रू.
They're not contradictory, but they blend together.
वो विपरीत नहीं है परंतु एक साथ हो जाते हैं.
And when we get into chapter 10, we're going to look at a very specific example about that.
और जब हम इब्रानी 10 की ओर बढ़ेंगे तब इसके बारे में हम ज्यादा जान पाएंगे.
But here in chapter 9, I want to bring your memory back to what we said the other day.
और नौ को जब जा रहे हैं और पुराने यानी पिछले दिनों में आपको जो मैं कहा था उसको आपके सामने लाना चाहता हूं मैं.
About the word testament and the word covenant.
और जो वाचा और जो नियम ये दोनों वर्ड है.
Can you remember how many times in Hebrew in the Old Testament the word testament is used?
और आप यानी याद कर सकते हैं कि पुराने नियम में जहां पे भी वाचा का शब्द उपयोग हुआ है कितने बार हुआ है?
Anybody know?
कोई कह सकता है? वाचा ओडियारे खाली नियम लिखा है जी पुरातन नियम नूतन नियम हिंदी लिखा है जी कितने हिंदी में वाचा लिखा जाता है तो कितने बार उपयोग हुआ है हिंदी वाले भाई बहन.
Does anybody remember how many times in the Old Testament the word for testament or will is used in scripture? और
कोई बता सकता है कि पुराना नियम में ये जो testament word वाचा का word उपयोग हुआ है कितने बार?
I was hoping somebody was going to remember. It's not used at all.
ये एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है.
It's never used once.
ये एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है.
It doesn't even exist in Hebrew.
और यहाँ पे इब्रानी वर्ड में ही ऐसा नहीं है कुछ.
The word covenant does.
परंतु जो कोवेनेंट जो जाओ तक मैं नियमों को पहुंचू यही वर्ड ही है.
It's used between covenants between God and man. It's used for covenant between God and man.
और ये जो नियम और जो covenant कहा जाता है ये परमेश्वर लोगों के बीच में इस्तेमाल हुआ.
And it's used for covenants between man and man.
और इंसान के बीच में जब हमें चुप्पी करते हैं उसी के बीच में इस्तेमाल हुआ.
There is a Greek word.
और एक ग्रीक शब्द है.
That is a technical word for a covenant.
और एक ऐसा एक शब्द है टेक्निकल शब्द ये नियम के लिए.
That if you're just talking about a covenant,
अगर आप एक नियम के बारे में बात कर रहे हैं
just like a contract which we've mentioned before,
जैसे हम पहले हम बात कर रहे थे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में.
There is a specific Greek word for that.
और उसके लिए ग्रीक के लिए एक अच्छा शब्द है ग्रीक में.
In Greek there's also a word that means a testament or will and a covenant. It's dependent upon how you want to use the word.
और ग्रीक में वाचा के लिए और नियम के लिए दोनों के लिए अलग-अलग शब्द है. आप इसको दोनों को अलग-अलग जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं.
If you were sitting down and you were talking to your boss about your work contract,
अगर आप बैठे हुए हैं और आप अपने मालिक जो बॉस है उनके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं,
you'd use this word.
आप तभी ये शब्द इस्तेमाल कर पाएंगे.
And if you're sitting down with your lawyer to write out your will,
और जब आप अपने वकील के सामने बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरे लिए विल यानी चुप्पी बना,
you can use this word.
आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं.
In the New Testament,
और नया नियम में,
the word that can mean both is the only word that's ever used.
और ये एक शब्द है जो दोनों को अर्थ दिखाता है.
And although in the Old Testament in Hebrew,
और जैसे कि पुराना नियम जैसे हिब्रू का हिब्रू में जब लिखा गया
the word testament or will doesn't even exist,
और जो नियम यानी जो वाचा वो लिखा नहीं गया
the writers of the Septuagint,
और जो सेप्टुएजेंट का लेखक हैं
the writers of the Greek version of the Old Testament,
और जो जब हम जैसे बात कर रहे थे कि कुछ लोग इब्रू भाषा का पुराना नियम को ग्रीक में लिखे वे लोग
only ever use the word that can mean both,
और ये लोग ही खाली ये सब को इस्तेमाल किए जिसको जिसका अर्थ दोनों को समझाता था
they never use the word that just strictly means covenant,
और वो ऐसा शब्द इस्तेमाल ले किए जिसका अर्थ खाली वाचा था
250 times in the Old Testament that word is used,
और 215 बार ऐसा शब्द ये शब्द पुराने नियम में इस्तेमाल हुआ
why
क्यों?
I believe it's the Holy Spirit who's indicating.
अब मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा उन्हें ये करने के लिए उकसाया.
That the Old Testament is going to be replaced by the New. The Old Covenant is going to be replaced by the New Testament.
और जो पुराना नियम है, वो पुराना वाचा है, वो नई वाचा के ऊपर यानी नई वाचा के नीचे आएगा.
Because it's by His death that we receive the promises.
क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा ही हमें सारे प्रतिज्ञाओं को मिलता है.
That's exactly what He says in verse 16.
और यहाँ पे 16 आयत में वही वो कह रहे हैं.
For where a testament is,
लिखा जाता है जहाँ पे चुक्ति है वाचा बांधी गई है
there must also of necessity be the death of the testator,
इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है
you see, when it comes to a covenant,
और जब एक वाचा की ओर आते हैं
if you've entered in a contract with your boss for work and for pay,
और जब आप अपने बॉस के सामने है आप कॉन्ट्रैक्ट में है और आप कुछ काम करेंगे आपको कुछ पैसा मिलेगा इसके बारे में
What happens if you die?
क्या होगा अगर आप मर जाएंगे तभी
Is your boss going to still pay someone?
आपका जो किए हुए काम के लिए आप जब मर जाएंगे क्या आपका मालिक या आपका बॉस आपको आपका पैसा जो काम किए होंगे किसी और को देगा
You're not doing any more work.
क्योंकि आप काम नहीं किया मर गए
And he has no one to pay.
और कोई नहीं है जो इसको पैसा दे सकता है
No, he tears up the contract.
और इसीलिए वो क्या करेगा वो चुक्ति को तोड़ देगा
Because one of the parties is dead.
क्योंकि जो अलग एक पार्टी यानी दोनों में से एक पार्टी का मौत हो गया
The same would be true if your boss died.
और ये इसके साथ भी हो सकता है जब आपका बॉस भी मर सकता है
If he's the one that owns the company,
और जो व्यक्ति वो मालिक का अधिकारी है मालिक है
and you have ये कंपनी का
और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हो
and he dies,
अगर वो मर जाता है
and there's no one else to run the company,
और कोई नहीं है कंपनी को चलाने के लिए
are you going to show up for work on Monday?
और आप उसके सामने जाएंगे कि सोमवार को काम करने के लिए
Knowing there's no one to pay you?
और जानते हैं कि वहाँ पे तो मेरे काम के बदले मुझे कोई पैसा देने वाला नहीं है
No, the contract is broken. The covenant is done.
यहाँ पे वो चुक्ति बंद हो गया क्योंकि वो कंपनी का मालिक जो मर गया
But the New Testament is completely different.
परंतु जो नया नियम है ये पूरी तरह अलग है
Because it's not in force yet.
और ये पढ़ें
It's not in force yet. It's not applied yet.
क्योंकि ये अभी तक लागू नहीं हुआ है
If I have a will,
अगर मेरा कुछ विल है
I have a testament of the things I'll leave my children.
अगर मेरा कुछ चीज है जो मेरे बच्चों को मैं दूंगा
As long as I live, that's just a piece of paper.
और जब तक मैं जिंदा हूँ वो खाली एक पेपर है कोई कागज का टुकड़ा है
It has no power.
पावर ऑफ अटॉर्नी जानी चाहती पावर ऑफ अटॉर्नी बोला पूरे पूरे दी करा जाए और संपत्ति पाया पाए से भी सारे पहुंच जाती है
माय किड्स कैन गो टू अ लॉयर एंड से हे आई डिजर्व दीस थिंग्स
जब तक आप जिंदा हैं आपके बच्चे नहीं जाके नहीं कह सकते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए लॉयर के पास जाके
द लॉयर विल से दे स्टिल बिलोंग टू योर फादर
और वो वकील कहेगा ये अब तक आपके पापा का ही है
इट्स नॉट अंटिल आई डाई दैट माय विल गोस इनटू इफेक्ट
जब तक मैं मरता नहीं तब तक ये चीज ये संपत्ति ये उनका नहीं होगा बच्चों का
That's what verse 16 is saying about Christ.
ये 16 आयत उसी के जैसा मसीह के बारे में हमें कह रहा है
That's why the Holy Spirit had the writers of the scripture use that word.
और इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जरिए इब्रानियों का लेखक इसमें इसको यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं
because in the language and the understanding of the Old Testament it's a covenant
और जो समझ में आने वाला चीज है पुराने नियम में जो था उसको वाचा कहा जाता था
because it's dependent upon what I do with God and what he does for me
और ये किसके ऊपर निर्भर था मैं प्रभु के लिए क्या करूंगा प्रभु मेरे लिए क्या करेंगे
but now it's different
परंतु अभी अलग है
it's what God is doing for me based on the death of Jesus Christ
ये क्या क्यों अलग है क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहा है यीशु मसीह के मौत के ऊपर मृत्यु के ऊपर जब मैं निर्भर करता हूं
That's what he's saying in verse 17
और यहां पे 17 में वो कह रहे हैं
It's only enforced after the death of the person who's written it
और ये तब लागू होता है जब वो वाचा बांधी गई व्यक्ति मरता है
Otherwise it has no power
और पर उसका ये सॉरी क्या बोले
Otherwise it has no power or ability
नहीं तो उसका कोई दक्षता नहीं है उसका कोई लागू नहीं होने का कोई नहीं है वहां पे
एंड जीसस देयरफॉर ही इज देयर एट द लास्ट सपर
और इसीलिए यीशु मसीह उसी दिन जो उनका शेष दिन था वो कह रहे थे
ही सेज दिस इज द न्यू टेस्टामेंट इन माय ब्लड
वो क्या कहे कि मेरे लहू से एक नई वाचा मैं दे रहा हूं तुम्हें
ही रिटन इट विद हिज ओन ब्लड
और वो उसे अपने लहू से खून से लिखे
And he said, if you believe in me, you'll have everlasting life.
और कहे कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो अनंतकालीन जीवन पाओगे।
All the promises in Christ are ours because of His will, His testament.
और यीशु मसीह में जितने सारे प्रतिज्ञाएं हैं, वो हमें मिलता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, ये उसकी वाचा बांधी गई चीजों के लिए ही है।
We could go through and we could look at the covenants in the Old Testament.
और हम पुराने नियम में जितना नियम था, वाचा था, उसके बारे में जाके हम देख सकते हैं।
And we can examine how they work, and it's a profitable thing to do.
और वो देख सकते हैं कि वो कैसे लागू किया जाता है, तो हमारे लिए फायदेमंद भी होगा।
But the writer of Hebrews wants us to understand that Christ is more profitable.
लेकिन इब्रानियों के लेखक हमें बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हुए।
That understanding that it is His will and testament written in His own blood for you.
ये समझना जरूरी है कि ये उसकी वाचा, उसकी लहू से लिखी गई है।
You didn't earn it.
और ये आप यानी आप उसको नहीं लाए।
It's not a contract between you and a boss.
और आपका मालिक और आपके बीच में ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है
Because if that was so, when he died, the contract's null and void.
और अगर ऐसा होता तो जब वो मरा तो कॉन्ट्रैक्ट उसको तोड़ दिया जाता
No, it is a testament. It's what's given to us freely because of his will.
परंतु ये एक वाचा है और ये हमें मुफ्त में मिला है हमारे यीशु मसीह मरने के बाद
It's the promise of Abraham versus the law of works.
और ये अब्राहम इब्राहिम का प्रतिज्ञा हमें मिला है
And the promise of Abraham gives us security with God.
और इब्राहिम का जो प्रतिज्ञा हमें परमेश्वर में अटल रहने के लिए सिखाता है
We've talked a number of times about our justification, our sanctification, and our glorification.
हमारा धर्मी गिना जाना, हमें पवित्र करना और हमें महिमा को तरफ लेना, हम इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं
There's another way of saying this.
और इसको अलग तरीके से हम कह भी सकते हैं।
He has saved me from the penalty of sin.
वो हमें पाप की जो दशा थी वहां से मुझे वो मुक्ति दी।
That's accomplished. That's my justification.
और ये हो चुका है। ये हो चुका है मेरे लिए।
He is saving me from the power of sin.
ये पाप की क्षमता से अभी मुझे छुड़ा रहा है।
That's my sanctification.
ये मुझे पवित्र बना रहा है।
That's what's going on in my life as he conforms me to the image of Christ.
जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये मेरे लिए होता रहेगा और वो मुझे महिमा देगा तभी।
And he will save me from the presence of sin.
और पाप का उपस्थिति से वो मुझे वो छुड़ा रहा है।
That's my glorification.
और ये मेरा महिमा का समय है।
That's the hope that we look forward to.
और इसीलिए हम उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उसके आगे देख रहे हैं हमारे जीवन में।
He has saved me from the penalty of sin.
वो पाप की दंड से मुझे आजादी दी।
He is saving me from the power of sin.
वो पाप की क्षमता से मुझे आजादी दे रहा है।
And he will save me from the presence of sin.
और पाप की उपस्थिति से मुझे आने वाले दिनों में आजादी देगा।
And the writer of Hebrews is saying that this is only possible because our great high priest wrote it in his will.
और इब्रानियों के लेखक ये कहते हैं, समझाने चाहते हैं, ये तभी संभव है जब तक वो यीशु मसीह उसके वही वाचक को अपने लहू से नहीं लिखा।
And therefore it's an eternal inheritance.
इसीलिए ये अनंत कालीन अधिकार है हमारे लिए।
I'm not going to ask whether anybody read about the cities of refuge.
और मैं आपको अभी नहीं पूछूंगा कि उस दिन मैं आपको जैसे पूछा था वो छिपने के स्थान के बारे में, नगर के बारे में आपको कहा गया था कुछ पढ़ने के लिए, आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं?
Do you remember how long the one had to wait in the city of refuge?
परंतु आप याद कर सकते हैं कितना दिन तक, कितना देर तक एक आदमी वही छिपने के स्थान पर, नगर पर रह सकता था?
He had to wait until the death of the high priest.
वो जब तक कि वो उसी समय का महायाजक का मृत्यु नहीं हो जाता तब तक।
When you and I have fled to Christ,
परंतु आप और मैं जब यीशु मसीह की तरफ हो लिए, पीछे हो लिए,
our high priest already died and rose again.
हमारा जो महायाजक है वो मर के उठ गए हैं।
And he ever lives to make intercession for us.
वो हमेशा के लिए जीवित है हमारे लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करने के लिए।
So the manslayer, the one that can come after me.
और जो हमारे विरुद्ध में था, जो मेरे पीछे यानी आ रहा था,
has no recourse.
और उसके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है मेरे विरुद्ध में, मेरे खिलाफ में।
He has no ability to do anything to me.
और उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि मेरे विरुद्ध में कुछ कर सके।
Because I'm with my high priest in the city of refuge for eternity.
क्योंकि छिपने के स्थान में मैं मेरे महायाजक के साथ अनंत काल के लिए हूँ।
That's the wonder of this New Testament.
और ये अचंभा करने वाला है ये नया नियम।
That's the glory of it.
इसका ये महिमा का चीज है।
It ought to encourage us.
ये हमको उत्साह देता है।
It ought to build us up in the faith.
और ये हमको विश्वास में और भी बढ़ाता है।
I'm debating whether we should go on or take a break.
You can.
It's up to you. Go on or what?
Yeah, it's up to you.
Let's take a break.